समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं नेहा गोस्वामी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
Hello Neha, namaskar, hello and good afternoon to all our listeners. You're tuned into Parikrama on 100.1 FM. I'm Abhishek Mukhopadhyay and with me today is my co-host Neha. And listeners, for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, tributes and much more. We begin with the news headlines first. India and Fiji exchange 7 agreements including on health, standardization, capacity building and also on big impact projects.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका के साथ वार्ता की। कहा, दोनों देश साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण के क्षेत्र में अपने अनुभव साझा करने के लिए तैयार।
होम मिनिस्टर अमित शाह क्रिटिसाइजेस ऑपोजिशन पार्टीज फॉर प्रोटेस्ट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल। एंड आईएमडी इश्यूज रेड अलर्ट फॉर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल ओवर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब टुडे।
वियतनाम में तूफान काजीकी के तट से टकराने से पहले लगभग 6 लाख लोगों को सुरक्षित निकाला गया, हवाई अड्डे बंद किए गए।
And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about India-Fiji cultural ties. Namaste, Bulavinaka, and a very warm welcome. Today we are celebrating India and Fiji, a bond across oceans. In this vibrant journey today, we will take you through the latest developments between India and Fiji, explore the historic ties, celebrate the shared culture, and look ahead to a future shaped by trust, cooperation, and community. In New Delhi today, a milestone moment unfolded, a moment that once again reminds us of the warmth and strength of the India-Fiji friendship.
भारत और फिजी ने 7 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें स्वास्थ्य सेवा और मानकीकरण से लेकर क्षमता निर्माण और बड़े प्रभाव वाली विकास परियोजनाओं तक के क्षेत्र शामिल हैं। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका के बीच आधिकारिक वार्ता के दौरान हुई और इसके परिणाम केवल कूटनीतिक ही नहीं बल्कि अत्यंत मानवीय भी होंगे।
Yes, and healthcare took center stage. India announced the construction of a 100-bed super speciality hospital in Suva, the capital of Fiji, and this will revolutionize access to advanced medical care for thousands of Fijians. India is also providing dialysis units to tackle the growing burden of kidney disease, as well as sea ambulances, which are crucial for a nation made up of over 300 islands. And in a move towards affordable medicine, India will help set up Jan Aushadhi centers in Fiji, making high-quality generic medicines accessible to everyone, especially the poor.
हमने तय किया कि सुवा में 100-bed super speciality अस्पताल बनाया जाएगा, dialysis units और sea ambulance भेजी जाएगी और जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, जिससे सस्ती और उत्तम क्वालिटी की दवा हर घर तक पहुंचेगी।
लेकिन स्वास्थ्य इस साझेदारी का केवल एकमात्र स्तंभ नहीं है, आइए दूसरे स्तंभ पर बात करते हैं। आज की दुनिया में डिजिटल क्षेत्र एक वरदान की तरह है और वही एक युद्ध क्षेत्र भी है, इसलिए भारत और फिजी साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण में विशेषज्ञता साझा करने पर सहमत हुए हैं। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के बढ़ते वैश्विक खतरे पर भी चर्चा की और रक्षा एवं सुरक्षा में आपसी सहयोग का संकल्प लिया। एक व्यापक कार्य योजना पहले ही तैयार की जा चुकी है जो भविष्य के संयुक्त प्रयासों की दिशा तय करेगी।
प्राइम मिनिस्टर मोदी हाईलाइटेड अ कंसर्न क्लोज टू फिजीज हार्ट, क्लाइमेट चेंज। एज अ पैसिफिक आइलैंड नेशन, फिजी इज ऑन द फ्रंट लाइंस ऑफ राइजिंग सी लेवल्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स। India and Fiji are working together on solutions from solar power to climate-resilient infrastructure. Both countries are proudly part of the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster-Resilient Infrastructure, and the newly formed Global Biofuels Alliance. And this isn't just a policy, it's survival, sustainability and shared responsibility.
ये सभी समझौते भविष्योन्मुखी हैं, लेकिन भारत और फिजी के बीच संबंध अत्यंत ऐतिहासिक और भावनात्मक रहे हैं। आइए समय को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। 1800 के दशक के उत्तरार्ध में हजारों भारतीय काम के लिए फिजी पहुंचे। कठिनाइयों के बावजूद वे वहीं रहे, खुद को ढाला और फिजी को अपना घर बना लिया। आज फिजी की लगभग 40% आबादी भारतीय मूल की है और उनकी उपस्थिति ने फिजी के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को समृद्ध बनाया है। भारतीय फिजी समुदाय ने समृद्ध परंपराओं को आगे बढ़ाया है और इनमें से कई परंपराओं को फिजी की जीवन शैली में प्रेम पूर्वक पिरोया गया है।
यस नेहा, एंड टॉकिंग अबाउट डांस एंड म्यूजिक, फ्रॉम क्लासिकल भरतनाट्यम एंड कथक परफॉर्मेंसेस टू फिजी सोन नेकी व्हिच ब्लेंड्स स्टोरी टेलिंग विद मूवमेंट, द आर्टिस्टिक सिनर्जी इज ब्यूटीफुल. Festivals like Diwali, Eid, Ram Navami and Holi light up Fiji's calendar with color and joy.
Fiji ka pak kala se judav bhi kafi hai. Kalpana kijiye cassava ke aate se bani roti, masaledar chutney aur ushnakatibandhiya phal. Ye sab Fiji ki garmjoshi ke saath parose jate hain. Aur mithaiyan. Ji haan, Fiji ko gulab jamun, barfi aur jalebi utni hi pasand hai jitni bhartiyon ko.
Absolutely, Neha, and let's not forget the language of play, sports. Fiji is famous for its rugby sevens team, one of the best in the world. And while cricket might not yet be Fiji's main sport, interest is steadily growing. India Being Cricket Mad has supported efforts to promote the game in Fiji through coaching, equipment and cultural exchanges. Meanwhile, Fijian rugby players have found fans in India, especially during the Olympics and Commonwealth Games. Today, Fiji's Prime Minister Rabuka summed it up beautifully when he said, "My delegation has been very impressed beyond expectations. India and Fiji stand together in promoting peace, stability, welfare and development."
We look forward to continuing the great cooperation we have. We have been fortunate to be part of your global efforts in solarization and medicine research and the use of your recent discoveries and inventions. We can only benefit. We may not have the ability to be up there in the front, but whatever we get in our relationship, we will value and we will treasure.
इसके साथ ही उन्होंने यह भी याद किया कि पिछले साल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करके फिजी के लोगों को कितना गौरवान्वित महसूस हुआ था। यह एक ऐसी यात्रा थी जिसने इस अद्भुत मित्रता को और मजबूत किया। भारत और फिजी की कहानी सम्मान और पारस्परिकता की कहानी है, चाहे वह फिजी के मंत्रों के मधुर लय हो या भारतीय ढोल की जीवंत थाप। ये दोनों संस्कृतियां आशा और सद्भाव की साझा लय पर नृत्य करती हैं।
Absolutely. So to conclude our discussion on India-Fiji cultural ties, Neha, as the world grows more interconnected, its partnerships like these, grounded in people, culture and compassion, that truly show us the way forward. From Suva to Surat, Labasa to Lucknow and Bar to Bengaluru, let the bond between India and Fiji continue to thrive across generations.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
The fifth edition of the Lok Samvardhan Parv is set to begin in Kerala's Kochi from tomorrow to the 4th of next month. And the 10-day event organized by the Minority Affairs Ministry will be inaugurated by the Union Minister of State for Minority Affairs, George Kurian. We have a report.
The 10-day festival will bring together over 100 artisans and 15 culinary experts from across the country. Traditional crafts including zari and chikankari of Uttar Pradesh, phulkari embroidery of Punjab, Madhubani paintings of Bihar, blue pottery of Rajasthan, pashmina weaving from Ladakh and Bastar iron craft from Chhattisgarh will be on display. Visitors will also get to savor an extensive culinary showcase featuring traditional foods, spices, pickles, bakery products, herbal preparations and coastal delicacies. cities. Alongside the exhibition, the festival will host cultural performances and live demonstrations that highlight the rich artistic heritage of minority communities. Lok Samvardhan Parv is a flagship initiative of the ministry designed to provide artisans, craftspersons, weavers, culinary experts and entrepreneurs from minority communities with market linkages and national exposure. By offering them a platform to showcase their art, craft and talent, the Parv strengthens economic empowerment while also celebrating India's vibrant diversity. Saklan Akhtar, Akashwani News, Delhi.
अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की यात्रा से लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का आज लखनऊ पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में आयोजित स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए शुभांशु ने कहा कि भारत अपने अंतरिक्ष मिशन की ओर पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है। देश के पास 2040 तक का पूरा प्लान है।
एक्सियम मिशन 4 को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद जब भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला पहली बार अपने शहर लखनऊ पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर उनके माता पिता और परिजनों के साथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और मेयर सुषमा खरकवाल ने स्वागत किया। नगर निगम ने भी शुभांशु के स्वागत को लेकर खास तैयारी की थी। पूरे शहर में नेशनल हीरो शुभांशु शुक्ला के पोस्टर लगाए गए थे। रोड शो के दौरान बच्चों ने तिरंगा लहराकर अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं शुभांशु शुक्ला के लखनऊ आने पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि ये पूरे प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। अंतरिक्ष में भारत ने नई कहानी लिखी है जिसके नायक शुभांशु शुक्ला हैं। दुनिया में अब भारत के अंतरिक्ष विज्ञान की चर्चा है।
के आज लखनऊ के लिए बहुत ही बड़ा दिन है जब माँ भारती का बेटा लखनऊ का लाल लखनऊ की धरती पर कदम रखा। अंतरिक्ष में जब वो रिसर्च करके लौट रहे थे तो उस क्षण का इंतजार लखनऊवासी बड़े लंबे समय से कर रहे थे। आज वो क्षण आया। हम सब ने आदरणीय शुभांशु शुक्ला जी का हृदय की गहराई से स्वागत किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस ढंग से दुनिया में अंतरिक्ष विज्ञान की चर्चा भारत की हो रही है वो अद्भुत क्षण है। और शुभांशु जी ने बताया कि अंतरिक्ष से कैसा भारत लगता है अद्भुत क्षण हम सब के लिए है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।
शुभांशु के स्कूल में आयोजित स्वागत समारोह में उन्होंने बच्चों के साथ अपने अंतरिक्ष स्टेशन के अनुभव को साझा किया और कहा कि अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों को लेकर देश सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। साल 2040 में भारत चंद्रमा पर मानव भेजेगा, इस मिशन के लिए तैयारी कीजिए। उन्होंने बच्चों को नेवर गिव अप का मंत्र दिया और कहा कि कभी भी हार मत मानिए। उन्होंने बताया कि पढ़ाई के दौरान वो भी औसत थे, इसलिए हर बच्चा देश के लिए बेहतर कर सकता है। परिक्रमा के लिए शैलेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
Young skaters of Ladakh shines at the Asian Eyes Short Track Speed Skating Trophy, held for the first time in India and won 6 medals. Let's hear more on this from a Leh correspondent.
On the final day of the Asian Ice Short Track Speed Skating Trophy 2025 held at Himadri Ice Rink, young athletes from Ladakh made history with an outstanding performance on the international stage. In a remarkable display of talent and determination, Mehvesh Fatima, 11 years, added one silver medal to her 2 bronze medals from previous day, while Madiha Mustafa, 8 years, secured another bronze medal. Adding to their success was Ladakh's youngest skater Fahim Mehdi, who had already won a bronze medal on day one of the competition. Together, these young skaters brought Ladakh's total medal tally to 6, marking a historic achievement. Mehvesh and Madiha made history by becoming the youngest skaters from Ladakh to win multiple medals in all events they participated in. They are also the youngest girl from Ladakh to represent Team India in ice speed skating at this level. Their combined haul of 5 out of Ladakh's 6 medal marks the highest international medal achievement in Ladakh's sporting history till now. The event concluded with a grand closing ceremony graced by Honorable Chief Minister Pushkar Singh Dhami as chief guest. The tournament featured over 180 skaters from 10 countries, marking a significant milestone in development of winter sports in India. Under the expert guidance of national coach Abbas Nordhuk from Ladakh, whose tireless efforts have shaped the young athletes, Ladakhi skaters demonstrated exceptional skill and commitment. Their success stands as a proud testament to Ladakh's rising prominence in ice speed skating and a moment of national pride for India. For Parikrama with Khurshid Yusuf, this is Phunsuk Wangmo from Leh Ladakh.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
India bagged 2 gold medals on the opening day of the 30th Commonwealth Weightlifting Championships in Ahmedabad, Gujarat, In the women's 44 kg to 48 kg category, Preeti Smita Bhoi lifted 63 kg in snatch and 87 kg in clean and jerk, finishing with a total of 150 kg. And moving on to some shooting news, Indian shooters dominated the 25-meter pistol women junior final, clinching a gold, silver and bronze at the Asian Shooting Championship in Shymkent, Kazakhstan today. Payal Khatri claimed the gold, Namya Kapoor won the silver, and Tejaswini claimed bronze. Earlier, the Indian trio of Manu Bhakar, Isha and Simranpreet Kaur Brar won the bronze in the 25-meter pistol women's senior team competition, finishing behind China and South Korea. However, India failed to open an account in the women's 25-meter pistol individual event. And on to some business news. Benchmark domestic equity indices ended the first day of the week with a gains of 0.4%, boosted by positive global cues. The Sensex rose 329 points to close at 81,636. Similarly, Nifty gained 98 points to settle at 24,968. In the global crude oil market, Brent crude was trading over 0.6%, up at $68.17 per barrel, and WTI crude was trading over 0.7%, up at $64.14 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading up at 1,800 rupees per 10 grams, while silver 999 fine was trading down at 1,16,530 rupees per kilogram when reports last came in.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
In 1943, Subhas Chandra Bose became the Supreme Commander of the Indian National Army, INA, और Azad Hind Fauj. The INA was formed in September 1942 by Ras Bihari Bose in Southeast Asia during the World War II with the purpose of an armed fight for India's independence. But soon it was disbanded. It was revived under the leadership of Subhas Chandra Bose after his arrival in Southeast Asia in 1943. It was in early 1943 that Bose recognized that Southeast Asia, with its large overseas Indian population, was the fertile ground for establishing an anti-colonial force to fight the British.
निहायत नम्रता के साथ और खुदा से दुआ मांगता हूं कि उन्होंने हमें वो ताकत वो जोश और वो बहादुरी दें.
In January 1943, the Japanese invited Bose to lead the Indian nationalist movement in East Asia.
インド仮政府師範スバスチャンドラ・ボース氏は空路ビルマに到着。
Subhas Chandra Bose was one of India's most prominent nationalist leaders who advocated armed struggle as the only way to free India.
I do not know how many of us who are going to participate in the coming battles will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free.
Netaji named the brigades of INA after Gandhi, Nehru, Maulana Azad and himself. There was also an all-women regiment named after Rani of Jhansi, Lakshmi Bai. Under his leadership, the INA drew ex-prisoners and thousands of civilian volunteers from the Indian expatriate population in Southeast Asia. The armed resistance of INA and their sacrifices are etched in people's memory forever.
25th August is also important in the history of the Indian freedom struggle because it is the birth anniversary of the famous freedom fighter Ganapati Agraharam Annadurai Ayyar Natesan. He was born in 1873 in Thanjavur. In 1900, he started the Indian Review, a monthly publication in English. The paper covered mostly nationalistic themes. When Mahatma Gandhi visited Madras for the first time since his arrival in India in 1915, he stayed at Natesan's house for almost a month. G.A. Natesan, who was a prolific writer and a journalist, established his own publishing company in 1897. He was a well-known publisher of Gandhian literature, including speeches and writings of Bapu.
Yes, and we're also remembering Neil Eldon Armstrong, who passed away on this day in 2012. He was an American astronaut and aeronautical engineer who, as a commander of the 1969 Apollo 11 mission, became the first person to walk on the moon. He was also a naval aviator, test pilot, and university professor. And also Truman Garcia Capote passed away on this day in 1984. He was an American novelist, screenwriter, playwright, and actor. Several of his short stories, novels, and plays have been praised as literary classics and is regarded as one of the founders of new journalism. His work and his life story have been adapted into and have been the subject of more than 20 films and television productions.
आज हम याद कर रहे हैं फिल्म निर्देशक, छायाकार, वृत्तचित्र, फिल्म निर्माता और पटकथा लेखक आसित सेन को, जिन्होंने बांग्ला और हिंदी दोनों सिनेमा में काम किया. आज उनका जन्मदिन है. उन्होंने हिंदी और बांग्ला में 17 फीचर फिल्मों का निर्देशन किया और उन्हें बांग्ला में द्वीप ज्वेले जय और उत्तर फाल्गुनी, हिंदी में ममता, खामोशी, अनोखी रात और सफर फिल्मों के लिए जाना जाता है.
Yes, and Asit Sen was, of course, the Indian film director, cinematographer, documentary filmmaker, and screenwriter who worked in both Bengali and Hindi cinema. Let's listen into a dialogue from one of his films.
ये तूने क्या किया?
उनके सचमुच छुपा बेटियां हुई थी.
तो तूने एक को छुपा दिया?
तो क्या हुआ? एक जैसी दो लड़कियों का वो क्या करते? और वो तो खुद ही कह रहे थे, जुड़वा होती तो एक हमें दे देते.
अरे कहने की बात तो और होती है. वैसे तो मैं भी बहुत कुछ कहता हूँ, लेकिन करने. अरे पगली, ये क्यों नहीं सोचती कि हम गरीब लोग एक बड़े घर की लड़की को क्या दे सकेंगे?
Yes, and Sir Thomas Sean Connery was born on this day in 1930. He was a Scottish actor. He was the first actor to portray the fictional British secret agent James Bond in motion pictures, starring in 7 Bond films between 1962 and 1983. Connery originated the role in Dr. No in 1962 and continued starring as Bond in the Eon production films From Russia with Love 1963, Goldfinger 1964, Thunderball 1965, You Only Live Twice 1967, and Diamonds Are Forever 1971. Connery made his final appearance in the franchise in Never Say Never Again in 1983, a non-Eon produced Bond film.
Karnatak Sangeet aur Tamil Parsh Gayika Nityashree Mahadevan ka aaj janmdin hai. नित्याश्री का पार्श्व गायिका के रूप में करियर 1998 में शुरू हुआ, जब एआर रहमान ने उन्हें फिल्म जीन्स के लिए कन्नौडू कनबधिल्लम रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया. यह गाना तुरंत लोकप्रिय हो गया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार मिला. उन्होंने रहमान के साथ कई लोकप्रिय गानों पर सहयोग करना जारी रखा, जिनमें पदयप्पा के लिए मिनसारा कन्ना और संगमम के लिए सोफ कियामा करने शामिल है. उन्होंने अन्य उल्लेखनीय फिल्म गीतों में आयराथिल ओरुवन का थाई थिंडर मन्ने और आनंद रंडावन का काना कांगिरेन शामिल है. उन्होंने कन्नड़, तेलुगु और मलयालम सहित अन्य दक्षिण भारतीय भाषाओं की फिल्मों के लिए भी रिकॉर्ड गाने गाए हैं.
विनय सापरू इज एन इंडियन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड स्क्रीन राइटर नोन फॉर हिज वर्क इन फिल्म्स, म्यूजिक वीडियोस एंड एड फिल्म्स, ऑफन इन पार्टनरशिप विद राधिका राव थ्रू द कंपनी राव एंड सापरू. His filmography includes directing feature films like Lucky, No Time for Love in 2005, I Love NY 2015, Sanam Teri Kasam 2016. Sapru and Rao are also known for directing over 100 music videos for artists like Ustad Nusrat Fateh Ali Khan, Arijit Singh and Neha Kakkar. And also Neha, William Ray Cyrus was born on this day in 1961. He is an American singer, songwriter and actor. Having released 16 studio albums and 53 singles since 1992, he is known for his hit single, Achy Breaky Heart, which topped the US. Let's listen to it.
My fingertips, they won't be reaching out for you.
Yes, and William Ray's Hot Country Songs chart, and this became the first single ever to achieve the triple platinum status in Australia. It was also the best-selling single in the same country in 1992, the song which you just heard. And due to the song's music video, the line dance rose in popularity. Well, moving on, Timothy Walter Burton was born on this day in 1958. He's an American filmmaker, artist and producer, known for popularizing goth culture in the American film industry. Burton is famous for his gothic horror and dark fantasy films. He has received numerous accolades, including an Emmy Award, as well as nominations for 2 Academy Awards, a Golden Globe Award, and 3 BAFTA Awards. He was honored with the Venice International Film Festival's Golden Lion for Lifetime Achievement in 2007 and was given the Order of Arts and Letters by Culture Minister of France in 2010. And also, moving on, Neha, Gene Simmons was born on this day in 1949, also known by stage persona, the Demon. He is an Israeli-born American musician. He was the bassist and co-lead singer of the hard rock band Kiss, which he co-founded with Paul Stanley, Ace Frehley, and Peter Criss in 1973. Simmons remained a member of Kiss until the band retired in 2023. Let's listen in to the band's hit track, Rock and Roll All Night, and it's from his 1975 hit album, Dressed to Kill. Yes, and Leonard Bernstein was born on this day in 1918. He was an American conductor, composer, pianist, music educator, author, and humanitarian, considered to be one of the most important conductors of his time. He was the first American-born conductor to receive international acclaim. Bernstein was one of the most prodigiously talented and successful musicians in American history, according to music critic Donald Hanahan. Bernstein's honors and accolades include 7 Emmy Awards, 2 Tony Awards, 16 Grammy Awards, including the Lifetime Achievement Award, as well as an Academy Award nomination, and he received the Kennedy Center Honor in 1981. Let's listen in to his hit composition, Make Our Garden Grow.
And so have I, but come and be my wife. And let us try before we die to make some sense of life. We're neither pure nor wise nor good. We'll do the best.
भारत की बेहतरीन पहलवानों में से एक मानी जाने वाली विनेश फोगाट आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। उनके पीछे कुश्ती की एक मजबूत विरासत है। 3 बार की ओलंपियन विनेश फोगाट के पास कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 स्वर्ण, वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक और एशियन गेम्स और एशियन चैंपियनशिप में 1-1 स्वर्ण पदक है। वह पेरिस 2024 ओलंपिक में फाइनल में पहुंची, लेकिन स्वर्ण पदक से चूक गई। उन्हें बहुत कम उम्र में उनके चाचा महावीर सिंह फोगाट ने इस खेल से परिचित कराया था। हालांकि विनेश को समाज के विरोध का सामना करना पड़ा, जो कुश्ती को पुरुषों का खेल मानते थे और महिलाओं को उनके घरों तक ही सीमित रखने की बात करते थे। लेकिन सभी बाधाओं को पार करते हुए विनेश फोगाट ने कुश्ती के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से दर्ज कराया है।
धड़कने छाती में जब दुबक जाती है, पीठ थप थपा उनको फिर जगा बात बन जाती है। सांवले हाथी सी हर चुनौती है रे, सामने खड़ी घूर के पड़ी आंख दिखलाती है, तो आंख से उसकी आंख मिला के भिड़ जाने का नाम है प्यारे दंगल दंगल।
Yes, and Vinesh was one of India's most accomplished female wrestlers, a two-time World Wrestling Championship bronze medalist. She is a former Asian champion, Asian Games gold medalist, and three-time Commonwealth Games gold medalist.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए नेहा गोस्वामी और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। नमस्कार।